परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 19 से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 19 अध्याय से अध्ययन करते हैं, हमारी विनती है प्रभु जी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, अपने जीवित वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें ताकि प्रभु हरेक का जीवन आपके वचन के द्वारा आश्रित होने पाए। आप हम सबके साथ में हो, हमारे सहायक हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। इसका विषय है मेमने का विवाह और न्याय के लिए प्रभु का पुनः आगमन। अब हम उन उत्साहवर्धक घटनाओं को देखेंगे जो हमसे संबंधित हैं। जी हां, अध्याय 19 में हम प्रकाशित वाक्य की शैली में परिवर्तन लाने वाली घटना को देखेंगे। पशु के राज्य की राजधानी बेबीलोन के नष्ट होने से महाक्लेश का अंत हो गया। विषाद अब आनंद का समय लाता है, अंधकार से उज्याले का समय आता है, रात के गहन अंधकार से श्वेत ज्योति का समय आता है, दंड के दुखद समय से आशीष का सुखद समय आता है। यह अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक निश्चित विभाजन लाता है और इस पृथ्वी पर एक महान घटना का प्रतिपादन करता है। पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु का पुनः आगमन। जी हां, यह महाक्लेश और इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु द्वारा स्थापित किए जाने वाले सहस्त्र वर्षीय राज्य का सेतु है। इस अध्याय में महान एवं अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। यहां दो मुख्य घटनाएं हैं, मेमने का विवाह भोज और पृथ्वी पर मसीह यीशु का पुनः आगमन। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। इस अध्याय का आरंभ जय जयकार के साथ आरंभ होता है और नरक का द्वार खुलने के साथ समाप्त होता है। दो मुख्य भोज हैं जिनका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है, मेमने का विवाह भोज और हर्मगिदोन के युद्ध के अंतिम चरण में सड़े गले मांस का नरभक्षण। इसमें चार हल्लेलुया हैं। अध्याय 19 के आरंभ में होते ही स्वर्ग से उठने वाले शब्द एक स्वर, एक सुर हो जाते हैं। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसका एक पद। लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। लिखा है इसके बाद। यह अभिव्यक्ति हमने उस समय देखी थी जब अध्याय 1 पद 19 में यहोना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का विभाजन प्रस्तुत किया था, जो इसके बाद होने वाली है। किसके बाद? कलीसिया के साथ होने वाली घटनाओं के बाद। अध्याय 4 का आरंभ ही इस प्रकार से ही हुआ था, इन बातों के बाद, और तब से ही हम इन बातों के बाद में ही चल रहे हैं। यहां एक कालक्रमिक विकास हो रहा है, घटनाओं की एक श्रृंखला चल रही है। अब हम देखेंगे कि महाक्लेश के बाद क्या होगा। इस अध्याय में पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आगमन का वृतांत दिया गया है। जी हां, एकमात्र वही है जो महाक्लेश का अंत कर सकता है। अतः यह इन बातों के बाद अभिव्यक्ति का अंतिम उल्लेख है। लिखा है बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से, अध्याय 5-7 में आराधना के दृश्य में हमने प्राचीनों को अर्थात कलीसिया को, असंख्य स्वर्गदूतों को तथा सृजित बुद्धिजीवियों को देखा था जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अब इस स्तुति गान में महाक्लेश के भक्त जनों की भी बहुत बड़ी संख्या जुड़ गई है, वे सब एक साथ गा रहे हैं। जी हां, यह एक अति अद्भुत बात है। यहां पहली बार वे पुराने नियम की स्तुति के महान मंत्र का उपयोग करते हैं, हल्लेलुया। पहले 6 पदों में यह पद 6 बार आया है और नए नियम में यहां एक ही बार इसका प्रयोग किया गया है। इसे अंतिम विजय के लिए सुरक्षित रखा गया था। भजन संहिता में आप देखेंगे कि इस शब्द का उपयोग बार बार किया गया है। इसका अर्थ है याह की स्तुति करो। भजन संहिता 146-150 में वह लगातार काम में लिया गया है। भजन संहिता 150 वास्तव में स्तुति का एक परमोत्कृष्ट भजन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हल्लेलुया स्तुति का एक उपयुक्त स्वर है, क्योंकि महाक्लेश का अंत हो गया है और प्रभु यीशु आ रहा है। कलीसिया को प्रभु यीशु के साथ विवाह में बंधना है। मेरे मित्रों, हमें भी यह गाना है। हमारी गायन मंडली कितनी भी अच्छी हो, वे इस भावी दिन के हल्लेलुया गान का सिरा भी नहीं छू सकती हैं। भजन संहिता 104 के 35 में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएंगे और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा, यह की स्तुति करो अर्थात हल्लेलुया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने आ रहा है और पृथ्वी पर से दुष्टों का नाश हो जाएगा। हालेलुया स्तुति की परिपूर्णता है, क्योंकि उद्धार का अंतिम चरण पूरा होने पर है। यही बात है पौलुस रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 18-23 पद में कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरे दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह से छुटकारे की बाट जोहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यही वह महान दिन है जो आने वाला है। पृथ्वी पाप के दासत्व से मुक्त हो जाएगी, तब तक वह कहरती रहेगी। समुद्री तट पर जाकर के लहरों की आवाज को सुने। मैंने एक दिन समुद्री तट पर ध्यान से सुना कि लहरें दुख के कारण रो रही हैं। पहाड़ों पर चीड़ के वृक्षों के मध्य बहती हवा की आवाज को सुने, वहां संगीत नहीं है, वे कहरती हैं, क्योंकि वे पृथ्वी पर आने वाले उस महान दिन की प्रतीक्षा में हैं। हम भी तो कहरते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं कहरता हूं। अपनी युवावस्था में तो मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतर जाता था, परंतु अब एक एक कदम पर कहरता हूं। मेरी पत्नी कहती है कि आपको कहरना नहीं चाहिए। मैं उससे कहता हूं कि कहना बाइबल आधारित है। धर्मशास्त्र कहता है कि हम इस देह में कहरते हैं। हम जब तक यहां पर हैं, मैं कहरने के पक्ष में पूर्ण रूप से हूं, परंतु एक दिन हमारा कहरना हल्लेलुया में बदल जाएगा। यूहन्ना यही तो हमसे कह रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 2-4 पद में लिखा है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, उसने उस बड़े वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हल्लेलुया। उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हल्लेलुया। मेरे प्रियो, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन सब दंड के समापन के पश्चात स्वर्ग में रहने वाले, जिन्हें हमसे कहीं अधिक सिद्ध ज्ञान प्राप्त है, कह सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय सत्य एवं उचित है। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर गलत कर रहा है, तो परमेश्वर नहीं, आप गलत हैं। आपका सोचना मेरे ही समान अधूरा है। बड़ी वेश्या को दंड देने में परमेश्वर न्यायनिष्ठ है। यह एक रोचक बात है कि उस बड़ी वेश्या अर्थात विधर्मी कलिसिया जो महाक्लेश में रहेगी, उसके बारे में लिखा है कि इस पृथ्वी के राजा और ख्रिस्त विरोधी ने उसका सर्वनाश किया, परंतु यहां कहा गया है कि परमेश्वर ने उसका नाश किया। सच तो यह है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य पूर्ति के निमित्त कई प्रकार के साधन को काम में लेता है। वह शैतान तक को काम में लेता है। स्वर्गवासी कह रहे हैं उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। विधर्मी कलिसिया तो विनाश के योग्य ही था। मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर की अनेक संतानों को शहीद किया था। इन पदों में हम कलिसिया को हल्लेलुया कहते सुनते हैं, और वह भी 2 बार। क्यों? जब तक सच्ची कलिसिया का स्वांग रचने वाली विधर्मी कलिसिया बड़ी वेश्या पृथ्वी पर रहेगी, तब तक स्वर्ग में मेमने का विवाह नहीं होगा। मेरे विचार में स्वर्ग में मेमने के विवाह का समय पृथ्वी पर महाक्लेश का मध्यकाल होगा। लिखा है उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया है। देखिए, विश्वासियों को बदला लेने से मना किया गया है। हम में से कुछ विश्वासी जन बदला लेने का प्रयास करते हैं, परंतु जिस पल हम ऐसा करते हैं उसी पल हम विश्वास का मार्ग त्याग देते हैं। रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आपके लिए बदला लेने का काम परमेश्वर करेगा। जब हमारी भावनाओं को दुख पहुंचता है और पहुंचा भी है, तब हम पलटकर वार करना चाहते हैं। यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव प्रतिक्रिया दिखाता है, परंतु हमें यह कार्यभार परमेश्वर पर डाल देना है। बुराई करने वाले को तो बचने देने की वह इच्छा ही नहीं रखता है। बदला लेना उसका काम है और वह इस विधर्मी तंत्र को दंड देगा। वे 24 प्राचीन पहली बार हल्लेलुया गाते हैं। प्राचीनों को हम कलिसिया मान रहे हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय में, प्राचीनों के प्रकट होने का यह अंतिम अवसर है, क्योंकि अब रूपक बदलेगा और कलिसिया मसीह की दुल्हन बनेगी। कलिसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए हुए लोग, अर्थात बुलाए हुए लोग, अलग किए हुए लोग। इस पृथ्वी पर हम बुलाए गए कलिसिया हैं, परंतु पृथ्वी से कूच करने के बाद कलिसिया दुल्हन है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 5-6 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। लिखा है और सिंहासन में से एक शब्द निकला, तुम सब उसकी स्तुति करो। देखिए, स्तुति की पुकार सीधी परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है, क्योंकि प्रभु यीशु संसार पर अधिकार करने की तैयारी कर रहा है। यह वास्तव में हल्लेलुया गान है और परमेश्वर के संपूर्ण वचन में सबसे गहरा स्तुति गान है। इससे हमें दाऊद के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा का स्मरण आता है, जिसमें परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि वह दाऊद के सिंहासन पर एक ऐसे मनुष्य को बैठाएगा जो संपूर्ण जगत पर राज्य करेगा। दूसरा सामुएल की पुस्तक 7 अध्याय के 16 पद में लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परंतु पृथ्वी पर प्रभु यीशु के फिर से आने के पूर्व विवाह होगा और आप और मैं विश्वासी होने के नाते उसके भागी होंगे। आइए हम आगे देखेंगे मेमने का विवाह और विवाह भोज। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरे प्रियो, यह सबसे अधिक उत्साहवर्धक अनुभव होगा जो विश्वासियों को कभी प्राप्त होगा। कलिसिया अर्थात पेंतिकोस के दिन से कलिसिया के उठाए जाने तक विश्वासियों की देह इस समय मसीह के लिए विवाह हेतु दुल्हन स्वरूप में दी जाएगी। विवाह स्वर्ग में होगा और यह संपूर्ण परिदृश्य स्वर्गिक होगा। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में पौलुस विश्वासी पति पत्नी के संबंध के बारे में कहता है, प्रसंगवश वह उनके बारे में कह रहा है जो आत्मा से भरे हुए हैं, और आत्मा के द्वारा प्रवाहित संबंधों के बारे में वह कह रहा है। आत्मा से भरे हुए पति के बिना और आत्मा से भरी हुई पत्नी के बिना आपका परिवार या मसीही परिवार नहीं हो सकता। सच तो यह है कि मैं मान ही नहीं सकता कि जब तक पति पत्नी विश्वासी ना हो वे सच्चे प्रेम को नहीं जान सकते। देखिए पौलुस क्या कहता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी तरह पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। यह मसीह यीशु और कलीसिया के संबंध का उदाहरण है। आज हम नई नैतिकता के युग में वास कर रहे हैं। हमारा आज का समाज यौनाचार में डूबा हुआ है। मैंने एक युवक युवती को सार्वजनिक स्थान पर प्रेमालाप करते देखा। मैंने मन ही मन सोचा वे प्रेम के बारे में वास्तव में जानते ही क्या है। वे जानते ही नहीं कि एक पुरुष का एक स्त्री से प्रेम करना और एक स्त्री का एक पुरुष के साथ प्रेम करना वास्तव में होता क्या है। मुझे खेद है कि अनेक विश्वासी भी प्रेम के बारे में नहीं जानते हैं। क्या आपको वह पहला पल स्मरण है जब आपने अपने पत्नी को देखा था? क्या आपको वह पल भी स्मरण है कि विवाह करके वह आपकी हो गई थी? क्या वह एक उत्साह का पल नहीं था? पत्नियों, क्या आपको वह पहला पल वह समय स्मरण है जब आपने उस कुरूप बूढ़े को जिससे आपका विवाह हुआ है पहली बार आपने उसे देखा था? उस समय तो आपने सोचा था कि वह कैसा रूपवान है जब उसने सप्रेम आपका हाथ थामा था, तब वह कैसा उत्साह का पल था। परंतु अब क्या है? इफिसियों की पत्री 5 उसके 25 से 27 पद में उस दिन का परिदृश्य प्रदान करता है जब प्रभु यीशु हमें शुद्ध और निर्दोष बनाकर अपने पास ले लेगा। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि इस नई नैतिकता के युग में आपको अपने विवाह में पवित्रता लाना है। जी हां, पवित्रता लाना है। पवित्र आप में से उन पर दया करें। जिन्हें अछूती लड़की नहीं मिली है। आप नई नवेली दुल्हन लाएं, पुरानी नहीं। यह वही बात है जिसे परमेश्वर हमें बताना चाहता है, क्योंकि यही अच्छी बात है कि आप पवित्रता का जीवन जिएं। जवानों, आप पवित्रता का जीवन जिएं। लिखा है, क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है। मसीह और कलीसिया के संबंध को दर्शाने के लिए विवाह एक अति उत्तम उपमा है। यहां ध्यान दीजिए कि कलीसिया में पुराने नियम के भक्त नहीं हैं, ये केवल कलीसिया के युग के विश्वासी हैं। यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं को दूल्हे का मित्र कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:29 में वह कहता है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। दुल्हन का संबंध मसीह के साथ अद्वितीय है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। आपको स्मरण होना चाहिए कि प्रभु यीशु आपके लिए मर गया। आपको स्मरण है कि प्रभु यीशु ने अपनी महायाजकीय प्रार्थना में क्या कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:23-26 में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मेरे प्रियो, अद्भुत बात तो यह है कि हम मसीह यीशु को जानेंगे, वास्तव में जानेंगे और पहली बार जानेंगे। आगे लिखा है, उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। कलीसिया का विवाह वस्त्र है, भक्त जनों के धर्म के काम। यह विचार स्वीकार करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। हमें अपनी धार्मिकता में मसीह यीशु के सम्मुख खड़ा होना असंभव है। फिलिपियों की पत्री 3:9 में पौलुस कहता है, और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी इस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। देखिए, हम विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर विश्वास कर सकते हैं, जो पापों के क्षमा के लिए नहीं है, परंतु उसकी अपनी धार्मिकता को हमें देने के लिए भी है। तो फिर यूहन्ना क्यों कहता है कि विवाह के वस्त्र भक्त जनों के धर्म के काम है? विवाह वस्त्र केवल एक बार ही पहना जाता है, परंतु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए अनंत काल तक का पहरावा है। हम विश्वासी मसीह के न्याय आसन के समक्ष खड़े होंगे, उद्धार के संदर्भ में, हमारे पापों के न्याय के लिए नहीं, परंतु प्रतिफल पाने के लिए। विश्वासी युगों से धर्म के काम कर रहे हैं, जो विवाह के वस्त्र की सजावट के लिए है। प्रसंगवश, आप विवाह के वस्त्र की सजावट के लिए क्या कर रहे हैं? आप प्रभु के लिए आज क्या कर रहे हैं? मैं एक बार फिर पौलुस का संदर्भ देना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3:14-14 में उसने कहा है, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जी हां, चांदी, सोना, बहुमोल पत्थर आग में भस्म नहीं होंगे, काठ, घास और फूस जल करके राख हो जाएंगे। अतः धर्म के काम कलीसिया के विवाह वस्त्र हैं। इफिसियों के पत्र 2:10 में पौलुस कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, विवाह के बाद विवाह के वस्त्र उतार कर रख दिए जाते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि प्राचीनों ने अपने अपने मुकुट उतार कर मेमने के चरणों में रख दिए थे और घोषणा की थी कि वही एकमात्र योग्य है, कलीसिया उसकी महिमा का प्रकाशन करेगी। इफिसियों की पत्री 2:7 में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हम प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। नरक से बचाए गए पापी अब स्वर्ग में हैं। हमारे पास तो स्वर्ग प्रवेश का अधिकार ही नहीं है। हम वहां मसीह की धार्मिकता के बिना और इस सत्य के बिना कि हम उसके हैं वहां नहीं जा सकते। मसीह और कलीसिया का संबंध घनिष्ठता का है, सर्वथा भिन्न है और परमानंद का है। ऐसी मधुरता का आनंद लेने वाला अन्य कोई प्राणी नहीं है, बस वही जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। मेरे मित्रों, यदि आज तक आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, उस सत्यता को आज तक आपने नहीं जाना है, स्वर्ग के लिए एक ही मार्ग है और वह है प्रभु यीशु, क्योंकि इस संसार में उसी ने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया, उस बलिदान को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। आज मौका आपके पास है। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको।